शांति, ओम शांति। आज रविवार है और 1 दिसंबर 2024 का अंतिम महीना बाबा के महावाक्य हम बच्चे सुनते रहते हैं। बाबा इतनी शक्ति हम बच्चों में भरते रहते हैं और हर अव्यक्त मुरली में तो अशरीरी बनो अशरीरी बनो, बाबा हमें ताकीद करते रहते हैं, इशारा देते रहते हैं, क्योंकि अंत में यही काम आएगा। कल भी बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर बातें कही हैं। कल की मुरली का सार था, समय की समीपता प्रमाण, स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। और ये मुरली थी 30/11/2005 की, 2005। और आज की जो मुरली है 2002 का साल पूरा हुआ, अब 2003 का साल शुरू हो रहा है और ये 18 जनवरी की मुरली है। 18 जनवरी स्मृति दिवस है, तो आज बाबा ने कहा केवल स्मृति दिवस नहीं लेकिन साथ साथ समर्थि दिवस भी है, साथ साथ स्नेह का दिवस भी है। तो स्मृति, समर्थि और स्नेह, इन तीनों शब्दों के आधार पर अब बाबा की आज की मुरली है। तो हम सुनेंगे, काफी लंबी मुरली है। आज 1/12/2024 है और ये अव्यक्त मुरली है 18 जनवरी 2003 की मुरली है। हेडिंग है ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन, सर्व को समर्थ बनाओ। केवल स्मृति दिवस नहीं है, समर्थि दिवस भी है। और केवल ब्रह्मा बाबा की ही याद नहीं है, बाबा की स्मृति के साथ साथ बाबा ने हमें कितनी और स्मृतियां भी दिलाई है। तो आज उन स्मृतियों को भी हम याद करें जिन स्मृतियों से फिर इतनी समर्थि आती है। तो बाबा ने स्मृति, समर्थि और स्नेह, इन तीनों शब्दों पर सारी मुरली चलाई है। तो ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन, सर्व को समर्थ बनाओ। ब्राह्मण जन्म की स्मृति। आज चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह के मीठे मीठे याद के भिन्न भिन्न बोल, स्नेह के मोती की मालाएं बाप दादा के पास अमृत वेले से भी पहले पहुंच गई। 18 जनवरी 4 बजे अमृत वेला करते, उसके पहले ही बच्चे उठ गए और बच्चों ने स्मृति की मालाएं पहनाई, स्नेह की मालाएं पहनाई बाबा को। तो भिन्न भिन्न बोल, स्नेह के मोती की मालाएं बाप दादा के पास अमृत वेले से भी पहले पहुंच गई। बच्चों का स्नेह बाप दादा को भी स्नेह के सागर में समा लेता है। बाप दादा ने देखा हरेक बच्चे में स्नेह की शक्ति अटूट है। 18 जनवरी तो विशेष दिन होता है और उस दिन बाबा के प्रति स्नेह की शक्ति अटूट अनुभव होती है। यह स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहयोगी बना देती है, हर बच्चे को सहयोगी बना रही है। कैसे सहयोगी बना रही है? स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहयोगी बना रही है। स्नेही बनते हैं तो सहयोगी भी बनते हैं। स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षणों से उपराम हो आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा एक बच्चा भी नहीं देखा, बाबा ने सब बच्चों को देखा सुबह सुबह, एक बच्चा भी नहीं देखा ऐसा जिसको बाप दादा द्वारा या विशेष आत्माओं द्वारा न्यारे और प्यारे स्नेह का अनुभव न हो। सभी ने स्नेह का अनुभव तो किया है ना, बाप दादा से स्नेह, दादियों से स्नेह, भैरवी परिवार से स्नेह, ये स्नेह का अनुभव बाबा कहते हैं। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने ये स्नेह का अनुभव नहीं किया हो। हरेक ब्राह्मण, हरेक ब्राह्मण आत्मा का ब्राह्मण जीवन का आदि काल स्नेह की शक्ति द्वारा ही हुआ है। कैसे बने बाबा के? स्नेह की शक्ति द्वारा ही जन्म हुआ। ब्राह्मण जन्म की यह स्नेह की शक्ति वरदान बन आगे बढ़ा रही है। तो आज का दिन विशेष बाप और बच्चों के स्नेह का दिन है। हरेक ने अपने दिल में स्नेह के मोतियों की बहुत बहुत मालाएं बाप दादा को पहनाई और शक्तियां आज के दिन मर्ज है। बाकी जो शक्तियां वो आज के दिन मर्ज है, लेकिन स्नेह की शक्ति मर्ज है। 18 जनवरी पर और कुछ याद नहीं आता, बस बाबा से जो स्नेह मिला है और वो स्नेह अनुभव कर रहे हैं और बाबा के प्रति वो स्नेह प्रकट कर रहे हैं। तो और सब शक्तियां मर्ज है, लेकिन स्नेह की शक्ति मर्ज है। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के सागर में लवलीन है। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो, 18 जनवरी स्मृति दिवस कहते हो। स्मृति दिवस सिर्फ ब्रह्मा बाप के स्मृति का दिवस नहीं है, तो किस किस बात का स्मृति दिवस है? लेकिन बाप दादा कहते हैं आज और सदा ये याद रहे कि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही, हमने जैसे ब्राह्मण जन्म लिया तो बाप दादा ने आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियां दिलाई है। ब्राह्मण जन्म लिया और बाबा ने क्या क्या स्मृतियां हमें दिलाई है, वो स्मृतियों की माला याद करो। कौन सी स्मृतियां बाबा ने दिलाई है, बहुत बड़ी माला बन जाएगी। सबसे पहली स्मृति सबको क्या मिली? जैसे ही बाबा के घर में आए, बाबा बहनों ने कहा अभी आप कोर्स करो, तो कोर्स जब कर रहे थे पहले दिन में कौन सी स्मृति मिली? मैं कौन? मैं आत्मा। तो सबसे पहली स्मृति सबको क्या मिली? पहला पाठ याद है ना, मैं कौन। इस स्मृति ने ही नया जन्म दिया। जैसे स्मृति आई मैं आत्मा हूं, तो जैसे नया जन्म हमें मिला, तो इस स्मृति ने ही नया जन्म दिया, फिर जन्म दिया, फिर वृत्ति दृष्टि स्मृति परिवर्तन कर दी। अब मैं आत्मा हूं तो सब आत्मा ही है, तो हमारी स्मृति दृष्टि वृत्ति सब परिवर्तन कर दी। ऐसी स्मृतियां याद आते ही फिर क्या अनुभव हुआ? स्मृति आई स्वयं की, तो इससे ऐसी स्मृतियां याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नैनों में मुख में आई जाती है, फिर खुशी भी आई। हाँ, अपने आप को कितना भाग्यशाली समझा कि अब मैंने अपने आप को पहचान लिया। तो खुशी की झलक नैनों में मुख में आई जाती है, आप स्मृतियां याद करते और भक्त क्या करते, हम स्मृतियां याद करते और भक्त माला सिमरन करते, वो सिमरन करते माला को, और वो किसकी माला, हमारी माला है, और हम स्मृतियां लाते हैं बुद्धि में, और तो हमारी है स्मृति और उनका है सिमरन। तो आप स्मृतियां याद करते और भक्त माला सिमरन करते हैं, एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्म योगी बनने समय भी, हाँ एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्म योगी बनने समय भी बार बार याद रहे, केवल अमृत वेले याद नहीं रही वो स्मृति, लेकिन फिर जब कर्म में आते हैं कर्म योगी बनते हैं, तो अमृत वेले से कर्म योगी बनने समय भी बार बार याद रहे तो क्या होगा, तो स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती है। ये स्मृति बार बार याद रहे तो स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती है, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी ही समर्थी स्वतः ही आती है। अब मैं कौन हूँ ये समझ लिया तो केवल स्मृति नहीं आई, उसी समय समर्थी भी आ जाती है, तो वो जैसी स्मृति वैसी ही समर्थी स्वतः ही आ जाती है। इसीलिए आज के दिन को स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थ दिवस भी कहते हैं। ब्रह्मा बाप सामने आते ही, स्मृति दिवस सब समझिए ब्रह्मा बाबा की स्मृति का दिवस है, तो ब्रह्मा बाप सामने आते ही बाप की दृष्टि पड़ते ही, बाबा की दृष्टि हमें मिलती है, तो दृष्टि पड़ते ही आत्माओं में समर्थी आ जाती है। सब अनुभवी है ना, बाबा के कमरे में बैठते हैं, बाबा की दृष्टि हम पर पड़ती है, ये अनुभव किया होगा आपने, बाबा के कमरे में आप कहाँ भी बैठो, किस भी कोने में भी बैठो या सामने भी बैठो, दाएं या बाएं तरफ भी बैठो, आपको ऐसे ही लगेगा बाबा आपको ही देख रहे, ऐसा अनुभव किया है ना, उस फोटो में ये ऐसी विशेषता है। तो बाबा कहते हैं सब अनुभवी हैं, सभी अनुभवी हो ना, चाहे साकार रूप में देखा, साकार बाबा तो जैसे बच्चों से मिलते थे पहले तो इतनी पावरफुल दृष्टि देते थे, तो जैसे साकार रूप में देखा, फिर चाहे अव्यक्त रूप की पालना से पलटे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हो, अव्यक्त बाप दादा भी जब आते तो सबसे पहले बच्चों को दृष्टि देते, तो चाहे साकार रूप में देखा चाहे अव्यक्त रूप की पालना से पलटे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हो, सेकंड में दिल से बाप दादा कहा, दिल से बाप दादा कहा, तो क्या हो जाता है, सेकंड में समर्थी स्वतः ही आ जाती है। इसलिए ओ समर्थ आत्माएं, केवल ओ स्मृति स्वरूप आत्माएं नहीं, ओ समर्थ आत्माएं अब अन्य आत्माओं को अपनी समर्थी से समर्थ बनाओ, केवल अपने तक नहीं रखो ये समर्थी, और जो आत्माएं हैं वो कमजोर है तो उनको भी समर्थी स्वरूप बनाओ। उमंग है ना, है उमंग असमर्थ को समर्थ बनाना है ना, ये है उमंग, बाबा पूछते हैं कि असमर्थ को समर्थ बनाना है। बाप दादा ने देखा कि चारों ओर कमजोर आत्माओं को समर्थ बनाने का उमंग भी अच्छा है, होती है दिल में, सबको बाबा का ज्ञान सुनाऊं, बाबा का परिचय दूं, तो सबको वो कमजोर आत्माओं को समर्थ बनाने का उमंग अच्छा है। अब शिवरात्रि, वो तो 18 जनवरी के बाद फरवरी में शिवरात्रि आती है, अभी भी 2025 में शिवरात्रि है, 26 फरवरी को शिवरात्रि है अगले साल, तो शिवरात्रि के प्रोग्राम धूमधाम से बना रहे हो, सबको उमंग है ना, जिसको उमंग है बस इस शिवरात्रि में कमाल करेंगे वो हाथ उठाओ, हाँ बहुत कमाल करेंगे ना, हाथ उठाओ भाई कमाल करेंगे ना, अभी शिवरात्रि आ रही है 26 फरवरी को, तो जिसको उमंग है बस इस शिवरात्रि में कमाल करेंगे वो हाथ उठाओ, ऐसी कमाल जो धमाल खत्म हो जाएगी। दुनिया में इतनी धमाल मची हुई है, वो धमाल खत्म हो जाए, आप इतनी कमाल करो, जय जयकार हो जाए, वाह वाह समर्थ आत्माएं वाह, हाँ बाबा कहते हैं। तो सब ने बहुत उमंग से हाथ उठाया कि हम कमाल करेंगे और धमाल को मिटाएंगे। तो बाबा भी वाह वाह करते ऐसे बच्चों की। सभी जोन में प्रोग्राम बनाया है ना, पंजाब में भी बनाया है ना, उस समय पंजाब का टर्न होगा तो पंजाब वाले बहुत आए थे, तो पंजाब में भी बनाया है ना, अच्छा है। भटकती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं, अशांत आत्माएं, ऐसी आत्माओं को अंजलि तो दे दो। फिर भी आपके भाई बहने हैं तो अपने भाइयों के ऊपर, अपने बहनों के ऊपर रहम आता है ना। देखो हाँ अभी रहम आता है तो बाबा ये क्या याद दिला रहे, देखो आजकल परमात्मा को आपदा के समय याद करते, कोई भी आपदा आती है, हे भगवान कितना याद करते, लेकिन भगवान को तो याद करते हैं परंतु और किसको याद करते हैं, लेकिन शक्तियों को, देवताओं में भी गणेश को, हनुमान को और भी देवताओं को ज्यादा याद करते हैं। केवल भगवान ही कहते हैं अम्बे माँ 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 कहकर पुकारते हैं, गणेश जी को याद करते हैं, हनुमान को याद करते हैं और भी देवताओं को याद करते हैं। तो वो कौन है, वो सब देवताएं कौन है, देवियां कौन है, हम बाबा कहते हैं वो कौन है, आप ही हो ना, आपको रोज याद करते हैं। आजकल तो हनुमान की तो बहुत महिमा करते, बहुत पूजा हनुमान की ज्यादा होती है, आपको रोज याद करते हैं, पुकार रहे हैं, हे कृपालु हे दयालु रहम करो कृपा करो, जरा सी एक सुख शांति की बूंद दे दो। इतने तक पुकार रहे हैं, भिखारी बन के मांग रहे हैं, सुख शांति की एक बूंद दे दो। आप द्वारा एक बूंद के प्यासी हैं, तो दुखियों का, प्यासी आत्माओं का आवास, हे शक्तियां हे देव नहीं पहुंच रहा है। सब शक्तियां बैठी है, देव बैठ रहे हैं, तो बाबा कहते हैं तो दुखियों का, प्यासी आत्माओं का आवाज नहीं पहुंच रहा है, पहुंच रहा है ना, हाँ भाई सिर तो हिलाओ, पहुंच रहा है या नहीं, पहुंच रहा है, पहुंच रहा है ना। बाप दादा जब पुकार सुनते हैं तो शक्तियों को और देवों को याद करते हैं। तो अच्छा प्रोग्राम दादी ने बनाया है, उस समय बनाया होगा शिव जयंती के लिए अच्छा प्रोग्राम, तो अच्छा प्रोग्राम दादी ने बनाया है। दादी जी तो थे 2003 में, 2007 में दादी जी अव्यक्त हुए, तो अच्छा प्रोग्राम दादी ने बनाया है। बाप को पसंद है, स्मृति दिवस तो सदा ही है, लेकिन फिर भी आज का दिन स्मृति द्वारा सर्व समर्थियां विशेष प्राप्त की। अब कल से शिवरात्रि तक, कल से 18 जनवरी हुई और फिर 19 जनवरी से, कल से शिवरात्रि तक बाप दादा चारों ओर के बच्चों को कहते कि यह विशेष दिन यही लक्ष्य रखो। अभी भी शिवरात्रि आ रही है तो बाबा कहते आज से शिवरात्रि तक क्या विशेष ध्यान, विशेष दिन, तो बाबा कहते हैं शिवरात्रि तक बाप दादा चारों ओर के बच्चों को कहते हैं कि यह विशेष दिन यही लक्ष्य रखो कि ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि जरूर देनी है। अपना उल्हेना उतार दो, नहीं तो बहुत उलहने मिलेंगे, आपने हमको बताया क्यों नहीं है, तो अपना उलहना उतार दो। बच्चे सोचते हैं अभी विनाश की डेट तो दिखाई नहीं देती है, तो कभी भी उलहना पूरी कर लेंगे, अभी तो कहाँ विनाश होना, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, तो हम कभी भी ये उलहना पूरा कर देंगे। लेकिन नहीं, अगर अभी से उलहना पूरा नहीं करेंगे तो ये भी उलहना मिलेगा, अंत में भी उलहना मिलेगा। अभी उलहना पूरा नहीं करेंगे तो अंत में भी क्या उलहना मिलेगा कि आपने हमको पहले क्यों नहीं बताया, अभी जब खत्म हो रहा है एक सारा खेल आप तब बता रहे हो, तो तभी भी उलहना मिलेगा। अभी अभी भी नहीं देंगे तो उलहना मिलेगा, आपने आप हमको क्यों नहीं बता रहे हो। कई ऐसे अनुभव सुनाते हैं कि हम तो ज्ञान में चलने लगे लेकिन घर में किसी को नहीं बताया, तो अचानक किसको मालूम पड़ गया कि मैं वहां जाता हूं, तो फिर वो भी जाने लगा, तो फिर अपने भाई को कहा जो पहले जाता था, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो देखो अभी भी उलहने मिल रहे हैं, तो मैं तो क्या नहीं उलहने मिलेंगे। तो बाबा कहते हैं तो ये भी उलहना मिलेगा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। हम भी कुछ तो बना देते, अभी तो टू लेट हो गया, उस समय क्या बनाएंगे, अंत में देंगे उनको तो संदेश। हम भी कुछ तो बना देते, फिर तो सिर्फ अहो प्रभु ही कहना पड़ेगा उनको, इसलिए उन्हें भी कुछ न कुछ तो वर्षे की अंचली लेने दो, उन्हों को भी कुछ समय दो, एक बूंद से भी प्यास तो बुझाओ, प्यासे के लिए एक बूंद भी बहुत महत्व वाली होती है। बहुत प्यासा हो और उसको अगर एक बूंद भी देंगे तो भी वो आपको धन्यवाद देगा एक बूंद ही लेकर। तो प्यासे के लिए एक बूंद भी बहुत महत्व वाली होती है, तो यही प्रोग्राम है ना कि कल से लेकर बाप दादा भी हरी झंडी नहीं, जो प्रोग्राम बना है उसके लिए बाबा की हरी झंडी नहीं दे रहे हैं, नगाड़ा बजा रहे हैं। नगाड़ा बजाओ, नगाड़ा मालूम क्या था, बड़े बड़े ढोल होते हैं जोर जोर से पीटते हैं वो नगाड़े, तो नगाड़ा बजा रहे हैं कि नगाड़ा बजा रहे हैं कि आत्माओं को, हे तृप्त आत्माएं, आप सब तृप्त आत्माएं हो, तो वो जो आत्माएं अतृप्त है, तो आत्माओं को हे तृप्त आत्माएं संदेश दो, संदेश दो। कम से कम शिवरात्रि पर बाप के बर्थडे का मुख तो मीठा करें कि हाँ हमें संदेश मिल गया, ये दिल खुश मिठाई सभी को सुनाओ। वो शिव का संदेश पर एक छोटी पुस्तिका भी बनी थी, छोटी बुकलेट, हम तो देखते थे बस, कितना बांटते रहते थे सबको ताकि थोड़ा बहुत तो पढ़े भगवान का संदेश। तो बाबा कहते हैं ये दिल खुश मिठाई सभी को सुनाओ खिलाओ, साधारण शिवरात्रि नहीं मनाना, कुछ कमाल करके दिखाना। उमंग है पहली लाइन को है, अब पहली लाइन में तो सब दादियां बैठे, वरिष्ठ भाई बहने बैठे, पहली लाइन को है बहुत धूम मचाओ। कम से कम ये तो समझे कि शिवरात्रि का इतना बड़ा महत्व है, हमारे बाप का जन्मदिन है, सुन के खुशी तो मनाए। बाप दादा ने देखा कि अमृत वेले मेजॉरिटी का याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है, अमृत वेला तो बहुत खुशी में रहते हैं, नाचते हैं, नशा भी खूब रहता है प्राप्तियों का। लेकिन कर्म योगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है उससे अंतर पड़ जाता है। अब ये भी बाबा ने किया, कर्मणा में आए तो कुछ किससे मिले, किसने कुछ कह दिया, फिर थोड़ी नाराज हो गए, तो वो अमृत वेले का नशा खत्म उड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं लेकिन कर्म योगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है उससे अंतर पड़ जाता है। कारण क्या है, नशे में अंतर क्यों पड़ जाता है जब कर्म योग की स्टेज में आते हैं। कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहते हैं, मैं आत्मा हूं ये तो समझते हैं, लेकिन कर्म पर ज्यादा जोर देते हैं तो कर्म कॉन्शियस भी हो जाते हैं। इसकी विधि है, हाँ, कारण क्या है, कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है, तो इसकी विधि है कर्म करते। अब क्या करो, जो वो सवेरे वाला नशा कम न हो बाद में, तो इसकी विधि है कर्म करते मैं आत्मा, कौन सी आत्मा, वही नशा रहे मैं, कौन सी आत्मा वो तो जानते ही हो। तो जो भिन्न भिन्न आत्मा के स्वमान मिले हैं, ऐसी आत्मा करावन हार होकर इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हो, ये कर्म इंद्रियां कर्मचारी है, लेकिन कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं करावन हार हूं, न्यारी हूं। क्या लौकिक में भी अभी ये अनुभव आप करो, कर्म करते हुए भी मैं आत्मा करावनहार इन कर्म इंद्रियों से करा रही हूँ। तो बाबा मिसाल देते हैं, क्या लौकिक में भी डायरेक्टर, अगर कोई डायरेक्टर है, अपने साथियों से निमित्त सेवा करने वालों से सेवा कराते, डायरेक्शन देते, ड्यूटी बजाते, क्या ये भूल जाता है कि मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे सबको देना है, क्या क्या काम करना है मुझे सबको बताना है, क्योंकि वो डायरेक्टर है, वो मुख्य है, तो इसलिए वो भूल थोड़ी जाता है कर्म करते हुए। तो डायरेक्शन देते, सेवा करते, ड्यूटी बजाते भूल जाता है क्या कि मैं डायरेक्टर हूँ। तो अपने को करावन हार शक्तिशाली आत्मा हूँ ये समझ कर कार्य कराओ अपनी इंद्रियों से। ये इंद्रियां आपकी करणहार है और आप करावनहार हो। ये आत्मा और शरीर, वो करणहार है शरीर और ये करावनहार है आत्मा। ये स्मृति मर्ज हो जाती है, जब कर्मयोगी बनते हो ये स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सबको, पुराने बच्चों को मालूम है, हमारी दादियों ने ये सब अनुभव किया, कि पुराने बच्चों को मालूम है कि ब्रह्मा बाप ने शुरू शुरू में क्या अभ्यास किया, बताते भी हैं ना, शुरू शुरू में बाबा ने क्या अभ्यास किया। एक डायरी देखी है ना, अब दो प्रकार की डायरियां, एक तो शिव बाबा की प्रवेशता के बाद डायरी और दूसरी शिव बाबा की प्रवेशता से पहले जो बाबा लौकिक में भक्ति में थे वो डायरी। यहाँ दोनों आपको पता तो होगा ही, तो बाबा बस का बताते हैं। एक डायरी देखी ना, सारी डायरी में एक ही शब्द, मैं भी आत्मा, यशोदा भी आत्मा, ये बच्चे भी आत्मा, डायरी में भी लिखते थे और दीवारों पर भी लिखते थे, मैं आत्मा, यशोदा बाबा की लौकिक युगल वो भी आत्मा, और बाबा की बहू थी राधिका, बहुत सुंदर थी राधा दादी, दादी जो थी ब्रिज इंदिरा दादी, उनको अलौकिक नाम मिला, वो महाराष्ट्र जोन की इंचार्ज थी, तो लौकिक में बहू थी बाबा की, बहुत सुंदर थी, और बाबा उनको जैसे अपना, वो बताते ना जैसे कोई किसी को सैंपल दिखाना होता है तो वो सैंपल कितना सुंदर होता, तो बाबा अपने बहू को वो सारे जो गहनों के हार, हीरे जवाहरातों के गहनों के हार उनको पहना करके ले जाते थे राजाओं के पास, रानियों को, तो वो रानियों को दिखाती थी कि ऐसे ऐसे हमारे पास जेवर है, तो रानियों के भी हमको ऐसा ही चाहिए, ऐसे ही जेवर चाहिए, हीरो के जेवर, तो रानियां तो उस समय वो राजाएं तो बहुत थे ना, तो इनको बाबा भेजते थे। तो बाबा कहते हैं, तो डायरी देखी थी ना शायरी, तो फिर उनको जब बाबा में परिवर्तन आया तो राधिका जिसमें बहुत मोह था बाबा का, उनको भी कैसे आत्मा रूप में देखना है ये बाबा ने अभ्यास किया। तो यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, ये आत्मा है, तो बाबा ने ऐसी प्रैक्टिस की। तो ये बच्चे भी आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, ये फाउंडेशन सदा का अभ्यास किया। तो ये पहला पाठ मैं कौन, इसका बार बार अभ्यास चाहिए, चेकिंग चाहिए, ऐसे नहीं मैं तो हूं ही आत्मा, बस कह दिया मैं तो हूं ही आत्मा, अनुभव करे कि मैं आत्मा करावनहार बन कर्म करा रही हूं। करणहार अलग है, करावनहार अलग है। ब्रह्मा बाप का दूसरा अनुभव भी सुना है, मंत्री को क्या कहा, हे मन मंत्री तुम्हारे सब कर्मचारी ठीक हैं, तुम्हारा कहना मानते हैं। हाँ, ये बाबा ने ज्ञान में मिलने से पहले डायरी में लिखा था। तो ब्रह्मा बाप का दूसरा अनुभव भी सुना है, उन्हें चलते फिरते अनुभव होता रहा, सारा दिन बाबा उसी अशरीरी स्थिति में थे, सब काम भी किया, न्यारे प्यारे भी रहे, लेकिन कभी ये भनक भी नहीं आने दी कि भई आज कोई जैसे बाबा व्यक्त होंगे। और सवेरे सवेरे बाबा को थोड़ा एक शॉर्ट हार्ट अटैक आया भी था, लेकिन और उस समय दादी जी सवेरे गई थी और बाबा को कहा, बाबा बहुत ठंडी है, 18 जनवरी तो बहुत ठंडी थी, बाबा आप बाहर मत निकलो कमरे से, मैं ही जा करके सबको दृष्टि दे के आ जाऊंगी, दादी जी वहीं थे। तो बाबा ने कहा ठीक है, चेस्ट पेन तो होगा जरूर, लेकिन बाबा तो हल्के रहे, न्यारे रहे, तो न्यारेपन में तो उसी स्थिति में बाबा नहीं गए बाहर। तो फिर सारा दिन बाबा ने बहुत कुछ काम किया, पत्र लिखे, सब कुछ किया, दादी जी को सारे जो स्टोर्स है वो दिखाए, दादी जी वहां तो रहते नहीं थे मधुबन में, तो बॉम्बे में रहती थी, बॉम्बे से आई थी दादी जी 13 तारीख को आई थी, पार्टी लेकर, कुछ विदेश के मेहमान थे तो उनको लेकर के आई थी, और 17 तारीख को जा रही थी वापस, बाबा ने उनको रोक दिया, तो देखो दादी जी उनके सामने थी। तो बाबा कहते हैं, तो बाप कार्य करते भी शरीर में होते हुए भी अशरीरी स्थिति में चलते फिरते अनुभव होता रहा, चाहे कर्म का हिसाब किताब भी चुकता करना पड़ा, सारा दिन वो हिसाब किताब तो चुकता कर रहे होंगे, लेकिन साक्षी हो न स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे, न औरों को कर्म के हिसाब किताब चुकता होने का अनुभव कराया। किसी को जरा भी संकल्प नहीं आया कि ऐसे बाबा चले जाएंगे। आपको मालूम पड़ा, बाबा दादी जी को देख कर कह रहे हैं, आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो रहा है, पहले सामने भी खड़ी रही, बाबा बैठे थे, आंखें बंद थी, उस समय का जो अनुभव ब्रह्मा बाबा का था वो गुजार दादी ने अनुभव सुनाया, वतन में जब गई तो बताया वापस आकर, क्योंकि दादी जी ने गुजार दादी को कहा कि बाबा से पूछो कि आपकी अंतिम स्थिति कैसी थी, अंतिम स्थिति। दादी जी तो केवल बस हाथ में हाथ और दृष्टि बस यही था, लेकिन बाबा की आंतरिक स्थिति कैसी थी, तो ब्रह्मा बाबा से पूछा। तो ब्रह्मा बाबा ने उस समय क्या कहा, बाबा ने कहा चार प्रकार की खींच थी, एक तरफ शिव बाबा बुला रहे थे, बच्चे अभी आओ मेरा साथी बन जाओ, दूसरी तरफ अव्यक्त ब्रह्मा की खींच थी कि आओ और आकर के ये बन जाओ, क्योंकि बाबा तो देखते थे ना, गुजारदारी देखती थी कि कैसे साकार ब्रह्मा और अव्यक्त ब्रह्मा कितना अंतर है, तो धीरे 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 वो अंतर खत्म हो रहा था, तो जैसे वो साकार अव्यक्त ब्रह्मा बन गया, तो इसीलिए वो अव्यक्त रूप भी कह रहा था आओ और ये बन जाओ। और तीसरी ओर थोड़ा देह का अंतिम हिसाब किताब भी था, और चौथी ओर बाबा दादी जी को भी याद कर रहा था, क्योंकि हैंडओवर करना था ना, और सच में दादी को उसी समय संकल्प आया, नहीं तो क्यों संकल्प, तो रात को नहीं जाते थे दादी, पर संकल्प आया, घड़ी देखी अभी तो 9 भी नहीं बजे हैं, और कहा मैं दादी को बाबा को गुड नाइट करूं, और दादी जी पहुंच गए, तो जैसे बाबा दादी जी का वेट कर रहे थे, और वो पुल भी थी, तो यही बाबा कह रहे हैं। तो दादी से बाबा ने पूछा, आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो रहा है, तो दादी ने ऐसे, दादी तो बैठी थी क्लास में ना डायमंड हॉल में, तो दादी ने ऐसे इशारे से कहा, नहीं, दादी को भी नहीं पता चला। तो आपको मालूम नहीं पड़ा ना? हाँ, दादी ने कहा नहीं मालूम पड़ा। तो इतना न्यारा साक्षी अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्टेज बहुत काल से अभ्यास किया ना, तब अंत में भी वही स्वरूप अनुभव हुआ, क्योंकि बाबा का बहुत काल का अशरीरी स्थिति का अनुभव था, तो इसीलिए लास्ट में कुछ पता ही नहीं चला, तो वही स्वरूप अनुभव किया। ये बहुत काल का अभ्यास काम में आता है। कल भी बाबा ने शाम को अव्यक्त मुरली में कहा ना, बहुत काल का अभ्यास चाहिए अशरीरी बनने का। ये बहुत काल का अभ्यास काम में आता है। ऐसे नहीं सोचो कि अंत में देहबान छोड़ देंगे, नहीं, बहुत काल का अशरीरीपन का देह से न्यारा करावन हार स्थिति का अनुभव चाहिए। अंत काल चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है, किसका भी कभी भी आ सकता है। ऐसे कोई नहीं सोचे अभी तो मैं बहुत जवान हूँ, मैं तो बहुत तंदुरुस्त हूँ, मेरा अंतकाल अभी थोड़ी आएगा, लेकिन बैठे बैठे बिल्कुल जवान, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दवाई नहीं लेता, बस हार्ट अटैक आ गया, हार्ट फेल, एक सेकेंड में पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए कभी भी किसी का भी आ सकता है अंतिम समय। इसीलिए बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो। चाहे कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लेकिन ये अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज न्यारा और बाप का प्यारा बना देगी। इसलिए बहुत काल शब्द को, बहुत काल शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं। बहुत काल का अभ्यास, तो बाबा इसको अंडरलाइन करा रहे हैं, बहुत काल। क्या भी हो, सारे बिजनेस साक्षीपन की स्टेज का, करावन हार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो। अभी क्या होता है कई बार ना, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये बस दूसरों को देखेंगे, खुद को नहीं देखेंगे। मैं साक्षी बनूं, मैं उपराम बनूं, मैं अशरीरी बनूं, वो स्थिति तो भूली जाती है, बस दूसरों को ही देखते हैं। तो बाबा कहते हैं तब अंत तो बाबा कहते हैं कभी भी क्या भी हो, तो सारे विघ्न साक्षीपन की स्टेज का, करावन हार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो। तब अंत में मते फरिश्ता सो देवता निश्चित है। बाप समान बनना है तो बाप निरंतर, हाँ, बाप समान बनना है ना, यही सबका लक्ष्य है। तो बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है, या ब्रह्मा बाप फरिश्ता है, शिव बाप निराकार है। तो बाप निराकार और फरिश्ता है, ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना। बाप समान, ब्रह्मा बाप समान बनना माना फरिश्ता स्टेज में रहना। जैसे फरिश्ता रूप साकार रूप में देखा, ब्रह्मा बाबा को अंत में यही रूप देखा। बात सुनते, बात करते, कारोबार करते अनुभव किया। बाबा के अंतिम जो साल था, सचमुच बिल्कुल जैसे बाबा एकदम उपराम हो गए। बाबा को बॉम्बे जाना था, मुझे याद है 1968 में सब तैयारी हो गई थी, सब तैयारी हो गई थी पूरी कि अब बाबा आएंगे, मकान भी ले लिया था, और अचानक संदेश आया मधुबन से कि बाबा नहीं आ रहे। इतनी सारी तैयारी और अचानक नहीं आएंगे, भाई क्यों? शिव बाबा ने छुट्टी नहीं दी, शिव बाबा ने छुट्टी नहीं दी अब तो, इसीलिए बाबा नहीं गए। और देखो जनवरी में कैसे बाबा व्यक्त हुए, नहीं तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी बाबा कभी मधुबन में नहीं होते थे, हमेशा मुंबई में रहते थे, क्योंकि मुंबई में मौसम बहुत अच्छा होता है, गर्मी नहीं, ठंडी नहीं होती है, कभी स्वेटर भी नहीं पहनते हैं मुंबई वाले, चाहे कितनी भी सर्दी हो, जरूरत ही नहीं होती है। और लेकिन बाबा को छुट्टी नहीं मिली शिव बाबा से, क्योंकि हमेशा जब भी बाबा जाते थे कहीं, तो पहले दादी उनके साथ रहते थे, संतरी दादी, वो बाबा की पर्सनल जैसे संदेशी थी, और बाबा उनको कहते थे जाओ बाबा से पूछ के आओ, बाबा से ये बात पूछ के आओ, बस गो सुन कम सुन, ये बाबा के मुख से शब्द निकलता था उनके लिए, गो सुन कम सुन, जल्दी जाओ जल्दी वापस आओ। तो बस बाबा दृष्टि देते थे उड़ जाती थी एक सेकेंड में, और फिर एक मिनट के अंदर आ भी जाती थी संदेश लेकर अव्यक्त बाप दादा का। तो इसलिए तो बाबा ने संदेश कुछ दिया ही नहीं, बाबा वतन में ही नहीं मिला उनको, नहीं तो कैसे छुट्टी भी ले गए, वतन में ही नहीं मिला, मना एक सिग्नल था कि नहीं जाना है क्योंकि छुट्टी नहीं मिली। तो वही बाबा कहते हैं, तो बाबा कहे तो फरिश्ता बन गए। तो ये तो बाबा कहे कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना ये तो थोड़ा समय हो सकता है, चलो काम काज छोड़ करके चलो मैं बाबा की याद में बैठता हूँ वो तो थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। आप सब फरिश्ते हो, बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले, आप फरिश्ते हो इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले, संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हो। फरिश्ता अर्थात देह में रहते देह से न्यारा और ये एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा है, असंभव नहीं है, ब्रह्मा बाबा कर सके तो हम क्यों नहीं कर सकते, बाबा कहते असंभव नहीं है, देखा अनुभव किया, जो भी निमित्त है चाहे अभी विस्तार ज्यादा है, उस समय इतना नहीं था अभी तो विस्तार बहुत हो गया है, लेकिन जितनी ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज, जितनी ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज, नई जीवन, नई दुनिया बनाने की जिम्मेदारी थी, कितनी जिम्मेदारी थी ब्रह्मा बाबा को, इतनी अभी किसकी भी नहीं है जितनी ब्रह्मा बाबा की जिम्मेदारी थी। तो सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना, शिव बाप समान बनना अर्थात निराकार स्थिति में स्थित होना, तो दोनों के समान बनना है, मुश्किल है क्या? बाप और दादा से प्यार है ना, तो जिससे प्यार है उस जैसा बनना, जब संकल्प भी है कि बनना है बाप समान बनना ही है तो कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ बार बार अटेंशन चाहिए। साधारण जीवन नहीं है, साधारण जीवन जीने वाले तो बहुत है दुनिया में, साधारण जीवन ही जीते हैं, आप तो साधारण नहीं हो, बड़े बड़े कार्य करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन आप जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। तो आज स्मृति दिवस पर बाप दादा समानता में समीप आओ, समीप आओ, समीप आओ, किसमें? समानता में का वरदान दे रहे हैं। सभी हद के किनारे चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म, संबंध, संपर्क, कोई भी हद का किनारा अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दो। अंडरलाइन, अभी से जीवन में रहते मुक्त, ऐसे मुक्त, ऐसे जीवन मुक्ति का अलौकिक अनुभव बहुत काल से करो। अच्छा, अब याद प्यार, चारों ओर के बच्चों के पत्र बहुत मिले हैं, बहुत पत्र आए थे बच्चों के, और मधुबन वालों की क्रोध मुक्त की रिपोर्ट, बाबा ने सबको कहा था ना क्रोध मुक्त, इस साल क्रोध मुक्त का साल था, तो वो क्रोध मुक्त की रिपोर्ट भी बाबा को भेजी थी, और मधुबन वालों की क्रोध मुक्त की रिपोर्ट समाचार भी बाप दादा के पास पहुंचा है। बाप दादा हिम्मत पर खुश है और आगे के लिए सदा मुक्त रहने के लिए सहन शक्ति का कवच पहने रखना, क्रोध मुक्त रहना है इसलिए क्या करना है, सहन शक्ति का कवच पहन कर रखो, दूसरा कितना भी क्रोध करे आप नहीं करो, तो कवच पहना हुआ होगा तो चाहे कितना भी कोई तीर मारे आपको लगेगा नहीं। हाँ, कवच पहनते हैं ना वो, इसको वो आर्मर कहते हैं तो इंग्लिश में, जो पहले योद्धे पहनते थे, तो बाबा कहते थे तो सही शक्ति का कवच पहन के रखना, तो कितना भी कोई प्रयत्न करेगा लेकिन आप सदा सेफ रहेंगे। ऐसे सर्व दृढ़ संकल्पधारी सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सदा सर्व समर्थियों को, समय पर कार्य में लाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं के रहम दिल आत्माओं को, सदा बाप दादा समान बनने के संकल्प को साकार रूप में लाने वाले ऐसे बहुत 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 प्यारे और न्यारे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब बाबा ने डबल फॉरेनर्स को, बहुत सुंदर बात कही है, डबल फॉरेनर्स को डबल नशा है। क्यों डबल नशा है? क्योंकि समझते हैं डबल फॉरेनर्स कि हम जैसे बाप दूर देश के है ना, तो हम भी दूर देश से आए हैं। बाप दादा ने डबल विदेशी बच्चों की एक विशेषता देखी कि दीप से दीप जगाते हुए अनेक देशों में बाप दादा के जगे हुए दीपकों की दिवाली मना दी है। किसी एक देश का विदेशी वो दूसरे देश में ज्ञान लिया, लेकिन अपने देश में जाकर के वो बाबा का संदेश देता और फिर सेंटर खोल देता, ऐसे बहुत कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे दीपकों की दिवाली मना दी है। डबल विदेशियों को संदेश देने का शौक अच्छा है। हर ग्रुप में बाप दादा ने देखा 35-40 देशों के तो होते ही है, हर ग्रुप में आते रहे हैं। मुबारक हो, इस बार भी 300 के लगभग आए थे। तो बाबा कहते हैं मुबारक हो, सदा स्वयं भी उड़ते रहो और फरिश्ते बनकर उड़ते उड़ते संदेश देते रहो। अच्छा है, आप 35 देश वालों को बाप दादा नहीं देख रहा है, और भी देश वालों को आपके साथ देख रहे हैं। तो नंबर 1 बाप समान बनने वाले हो ना, नंबर 1 या नंबर 2 बनने वाले हो, नंबर 1 बनना अर्थात हर समय विन करने वाले, जो वन है वो विन करते हैं, जो विन करते हैं वो वन होते हैं। तो ऐसे हो ना, बहुत अच्छा, विजयी हैं और सदा विजयी रहने वाले हैं। अच्छा, और सभी को जहाँ जहाँ जाओ वहाँ ये स्मृति दिलाना कि सभी डबल फॉरेनर्स को वन नंबर बनना है। अच्छा, बाप दादा सभी माताओं को, गौपाल की प्यारी माताओं को बहुत बहुत दिल से याद प्यार दे रहे हैं, और पांडव चाहे यूथ हो चाहे प्रवृत्ति वाले हो, पांडव सदा पांडव पति के साथ रहे हैं। ऐसे साथी पांडवों को भी बाप दादा बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। फिर दादी जी से, बहुत सुंदर बात दादी जी को बाबा ने कही है, आज के दिन क्या याद आता है, 18 जनवरी का दिन था तो 18 जनवरी के दिन ही दादी जी ने कैसे बाबा का हाथ पकड़ा और जैसे बाबा ने दादी को सब शक्तियां विल कर दी। तो आज के दिन क्या याद आता है, विल पावर्स मिली ना, विल पावर्स का वरदान है दादी जी को, बहुत अच्छा पाठ बजाया है, इसकी मुबारक है, सभी की दुआएं आपको बहुत है। दादी जी यही कहती थी, दादी जी से पूछते थे, दादी जी आप क्या पुरुषार्थ करते हो, दादी कहती थी 20% पुरुषार्थ, 80% आप सबकी दुआएं, ये दादी जी सदा कहती थी। तो बाबा कहते हैं सभी की दुआएं आपको बहुत है, आपको देख करके ही सभी खुश हो जाते हैं। दादी जी को कल देखा ना दादी जी, हाँ दादी जी भी अभी गुलजार दादी को लेकर आ रही दादी जी, और दादी जी ऐसे कर रही है तो जैसे दादी जी भी उस समय बिल्कुल कर्मातीत स्थिति के ही निकट थी। तो आपको देख करके ही सभी खुश हो जाते हैं, बोलो बोलो या नहीं बोलो, क्योंकि दादी जी उस समय धीरे धीरे मुरली बहुत ज्यादा नहीं चलाती थी, कभी आती थी तो याद प्यार देने के लिए आती थी, वरदान एक सुनाती थी, तो धीरे धीरे वो मुरली का उनका कम होता ही गया, तो ये भी देख करके खुश होते थे। फिर और लेट तो फिर और तो फिर दादी जी को व्हील चेयर पर लाते थे और दादी जी सबको देख करके बहुत गले लगती थी, हाँ याद है ना वो भी दृश्य। तो धीरे धीरे कैसे दादी जी उपराम होते गए और दादी जी के पास हम लोग जाते थे दादी जी से कुछ पूछना है, अब देखते थे दादी जी तो इतनी उपराम है तो पूछे भी क्या, हमको लगता था ये छोटी छोटी बातें क्या दादी जी से पूछे, क्या दादी जी को कहे, तो दिल भी नहीं होती थी कुछ बोलने की भी, बस एकदम शांत रहते थे और दादी जी से बस दृष्टि लेते थे, बस अंतिम दिनों में तो बस दादी जी से दृष्टि ही लेते रहे। तो बाबा कहते हैं तो चाहे बोलो या नहीं बोलो, आपको कुछ होता है ना तो सब ऐसे समझते हैं कि हमको हो रहा है। दादी जी की तबीयत कुछ ऐसी नरम गरम थी तो जैसे दादी जी को क्या हो रहा हमको हो रहा है, इतना प्यार है सभी का, हमारा भी सबसे बहुत प्यार है। दादी ने उस समय बाबा को कहा कि हमारा भी बहुत प्यार है सभी से, प्यार तो है बहुत सभी से, ये प्यार ही सभी को चला रहा है। धारणा कम हो ज्यादा हो हाँ किसी के अंदर, चलो धारणा कम भी हो लेकिन प्यार बहुत है, तो धारणा कम हो ज्यादा हो लेकिन प्यार चला रहा है बहुत अच्छा। अब उस समय यीशु दादी भी थी, यीशु दादी को भी कोई प्रॉब्लम हुई थी, तकलीफ थी शरीर की और वो भी ठीक हो गई थी और फिर बाबा के सामने आई, तो यीशु दादी से इसने भी हिसाब किताब चुकतू कर लिया, कोई बात नहीं इसका सहज पुरुषार्थ सहज हिसाब चुकतो, सहज ही हो गया, सोते सोते सब सहज हिसाब किताब चुकतो हो गया, आराम मिला विष्णु के माफे, लेटे लेटे भी अच्छा, फिर भी साकार से अभी सब अभी तक यज्ञ रक्षक बने हो। दादी जी हाँ दादी यीशु दादी खजांची के रूप में सारा हिसाब किताब लिखती थी, बाबा के पत्र भी सबसे पहले वही पढ़ती थी फिर बाबा को सुनाती थी, और सारी मुरलियां जो बाबा की चलती थी साकार में वो शॉर्ट हैंड अपनी करके वो सारी मुरली लिखती थी जो साकार मुरलियां हम सुनते हैं। अच्छा फिर भी साकार से अभी तक यज्ञ रक्षक बने हो, तो यज्ञ रक्षक बनने की दुआएं बहुत होती है, सभी दादियां बाप दादा के बहुत बहुत समीप हैं, समीप रत्न है और सबको दादियों का मूल्य है, संगठन भी अच्छा है, आप दादियों के संगठन ने इतने वर्ष यज्ञ की रक्षा की है और करते रहेंगे, हाँ अभी भी कर रही है, यह एकता सभी सफलता का आधार है, दादियों की एकता सभी सफलता का आधार है। तो दादी जी ने कहा कि बाबा बीच में है इसलिए हम सब बाबा के साथ है, बाबा बीच में है, दादी ने कहा बाप को बीच में रखा है ये अटेंशन बहुत अच्छा दिया है, अच्छा सभी ठीक है, तो सब ठीक है, वरदान सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव, बाप स्वयं सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं, जैसा समय वैसे संबंध से बाप के साथ रहो और साथी बनाओ, जहां सदा साथ भी है और साथी भी है वहां कोई मुश्किल हो नहीं सकता, जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो तो उस समय बाप के बिंदु रूप को याद नहीं करो, अकेला समझो तो बिंदु रूप को याद नहीं करो, प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ, भिन्न भिन्न समय के रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ, सर्व संबंधों के रस का अनुभव करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी और सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन बहुरूपी बन माया के बहु रूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे, बहुरूपी बन माया के बहु रूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। और आज का व्यक्त इशारा, नया महीना शुरू हुआ है आज से, तो आज से एक महीने तक जो अव्यक्त इशारे मिलेंगे वो किस आधार पर? संतुष्ट मणि बन, सदा संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। संतुष्ट मणि बन, सदा संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। तो सारे महीने में बाबा ने जो संतुष्टता पर महावाक्य सुनाए हैं वो हर दिन हम सुनेंगे। पहला आज पहली तारीख है। बाप दादा चाहते हैं कि हर एक बच्चा जब भी किसी से मिले तो उसे संतुष्टता का सहयोग दे, स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरों को भी संतुष्ट करे। सदा यही स्वमान स्मृति में रहे कि मैं संतुष्ट मणि हूँ, मुझे स्वयं सदा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। इसी स्वमान की सीट पर सदा एकाग्र रहना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे। और क्या है? अच्छा, किसने शरीर छोड़ा है? ग्लोबल हॉस्पिटल के करुणा भाई, ग्लोबल हॉस्पिटल के करुणा भाई कोई है। उनकी लौकिक माताजी ने कल अपना पुराना देह त्याग बाबा की गोद ली। वो बीमार थी। आज 9:30 बजे पांडव भवन श्री कृष्ण के जो मेन गेट के पास लाया जाएगा और श्रद्धांजलि देंगे। शांति वन के कुमार भाई, दादी जानकी की गाड़ी जो चलाते थे, शांति वन के कुमार भाई जो जयंती दीदी जी की गाड़ी चलाते, अभी उनकी गाड़ी चलाते हैं, कुमार भाई की लौकिक माता जी ने भी 2 दिन पहले अपना पुराना देह त्याग बाबा की गोद ली। हम सभी ऐसी विशेष आत्माओं को योग में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। चलो, इतना बाबा का बेहद परिवार है तो इसमें कोई न कोई दे छोड़ते हैं तो अवश्य उनको हम योगदान देंगे। ओम शांति।